जाता, क्योंकि इतनी बारीक चर्चा आसान नहीं है। करणान योग की सबसे बारीक चर्चा है, और उस करणान योग की चर्चा में हमारा अगर एक बार मन लग जावे तो संसार के राग द्वेष से बच जाते हैं। दूसरा प्रयोजन कहते हैं करणान योग का कि हमारा मन वैसे ही संसारी जीवों का राग द्वेष में उलझा रहता है, वहां से बचाने के लिए इस विषय में लगा दिया जावे तो हमारा मन जो है उसमें एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता सद जाती है करणान योग में, और हमें अपने परिणामों की खुद मालूम पड़ जाती है कि कौन से हमारे परिणाम हो रहे हैं और इस परिणाम का फल क्या मिलेगा। हम लोग परिणाम तो चाहे जैसे कर लेते हैं, लेकिन जब उनका फल मिलता है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। विवेकानंद ने एक जगह लिखा कि हम तुमसे कब कहते हैं कि पाप मत करो, गलत मत करो, तुम तो जितना बने उतना करो, मनो इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसको भोगने तैयार रहो, कोई गुंजाइश तो करो, नकायब करते हो। अगर फल भोगने की गुंजाइश नहीं तो करते क्यों, क्योंकि फल तुम्हें मिलेगा। किसी का किया हुआ फल किसी को नहीं मिलता। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। शुभ करोगे तो, अशुभ करोगे तो, और बैलेंस शीट नहीं बनती कि अपन ने 100 पाप कर ले, अब 100 पुण्य कर ले तो सब बराबर हो जाए। बैलेंस शीट नहीं बनती ऐसी। 100 पाप का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, और जो 100 पुण्य बांधे, हो सकता है कि पाप ज्यादा सशक्त हो गए तो वो पुण्य और पाप में कन्वर्ट होकर के आ जाए, ये भी है। इसलिए अपने परिणामों की बहुत संभाल। मैं तो कहता हूं कि घर में जो है ऊपर जैसे ही दरवाजा खुले सो सामने लिख के रख लेना चाहिए कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकश आयुषा। मैं मायाचारी करूंगा तो त्रियंच पशु बनूंगा, माया तैरग्यो नस्य। मैं स्वभाव से मृदुता रखूंगा, संतोष परिणाम रखूंगा तो मुझे फिर से मनुष्य आयु मिल सकती है, और अगर मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लूंगा तो सम्यक दर्शन के साथ तो अच्छे देवों की आयु भी मिलती, बुरे देवों की आयु भी नहीं मिलती, सौधर्म इत्यादि की आयु का बंधी होता है। ऐसा आकर हम अपने परिणामों को विचार करके और हमेशा वैसे बनाए, कहते हमें पता नहीं किस समय आयु का बंध हो जावे, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञान तो सबरा कर लिया, लेकिन अगर आपकी संभाल नहीं रही उसकी तो फिर वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। परिणामों की संभाल के लिए ज्ञान प्राप्त करना करणान योग सिखाता है कि कैसे परिणामों की संभाल करना, क्योंकि किन परिणामों से तुम्हें क्या फल मिलेगा, और आयु बंध तो किसी भी क्षण हो सकता। 7 कर्म तो 24 घंटे बन रहे हैं, लेकिन एक आयु कर्म है जो अपकर्ष काल आने पर ही बनता है, और किसी को नहीं मालूम कि कब अपकर्ष काल आएगा। इसलिए कहते परिणाम अच्छे रखो हमेशा, किसी भी क्षण बंध जाएगी आयु, फिर नहीं बदल सकते। जीवन भर अच्छा करते रहो, और आयु बंध के समय चूक गए तो अपन देखा तो है कि कुत्ता है और हो गया है कुत्ता, और एसी कार में घूम रहो, करो हुई ये अच्छो कछु, मगर आयु बंध के समय तिरंच आयु बांध ली, अब जे स्थिति है। और आयु बंध के समय बांध तो ली मनुष्य आयु पर, जिंदगी भर पाप किया है, सुदाने दाने को बाहर बैठे एक एक हाथ फैलाऊ बैठे हैं तो मनुष्य, पर्याय तो पाई मनुष्य की और पूरी जिंदगी निकल गई, क्यों पाप भी किया है साथ में। इसलिए ये भी नहीं समझना कि सिर्फ आयु बंध के समय हम संभल जावेंगे तो सब संभल जावेगा, नहीं, पूरे जीवन संभल करके रहना पड़ेगा। वर्णी जी की बारे में है ये बात आती है, वे एक बार तीर्थ वंदना खिलाने गए थे, तो या तो जयपुर की खानिया की नसिया की बात है या कहां की हमें तो याद नहीं आता, वहां पर गए तो एक पंडित जी थे तो वो अपनी रसोई बना रहे थे। व्रती व्यक्ति के साथ में थोड़ी मुश्किल ये है कि व्रती व्यक्ति बहुत रिजिड हो गया है, और वो ये भूल जाता है कि व्रती का मतलब है कि निराकुल होवे, शांत परिणामी होवे। धोती छी गई तो गुस्सा न करे, धोती छी गई दूसरी पहन ले, मगर तुमने क्यों छू ली हमारी और हमारे 16 बिगड़ गया। 16 तो बाद में बिगड़ो, पहले मन तो बिगड़ गो तुम, 16 तो बिगड़ो, सुबिगड़ो मन तो नहीं बिगाड़ो। लेकिन उनने बिगाड़ लिया अपना मन, क्या हुआ कि वो लाइन खींचे थे अपनी। अब देखना आप चौका में अकेले इतने में जूता उतरे और इधर से लाइन खींच दई, सो तो होगा जो शुद्ध होगा, और होते जूता उतरे लाइन तो खींची। अब लाइन नहीं जानत कछु लक्ष्मण रेखा नो कि बैक्टीरिया जानत है कि ये तरफी रहने, अपन को होता नहीं जाना ऐसा है क्या। उनने लाइन खींच ली, अब लाइन खींचे थे उतने में उनको पानी वानी सब रसोई तो बन गई थी, पानी वानी भरने जाना होगा सो गए होंगे, और उन लकड़ी जो है थोड़ी बाहर निकाल के डाल दी कि अब हो गया अपनी रसोई बन गई। वर्णी जी ने सोची कि जब लकड़ी तो इनके काम की नहीं है, पंडित जी से हैं व्रती हैं, एक पाँव उतर भी रख के वो लाइन के और उनने वह लकड़ी उठा के कि अपनी रसोई बना ले मैं अब। उतने में पंडित जी आ गए, उनने देख लो किल्ले तुमने पूरी हमारी रसोई भ्रष्ट कर दी, हो कौन जात के तुम? अब भी कहा बताएं कि कौन जात के हैं ये, तो वर्णी जी तो बहुत गर्म हो गया और बहुत बातें सुनाई उनने। अब वर्णी जी तो शांत रहे कि अब गलती तो हो गई, माफी मांगते रहे कि भैया हमें मालूम नहीं था, गलती तो हो गई, और अब सुनो थोड़ी विनोदी स्वभाव भी था सुकन ने, अब आपकी खराब हो गई तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बना लो जहां हम खा लें। अब वो तो विनोदी स्वभाव में चल गया, कब तो खराब होगी आपके काम की नहीं रह गई, हम खा लेंगे। उनको और गुस्सा आ गई पंडित जी को, कैसी बात करता है ते। तो अब इनको सोचा कि बात तो जो है गड़बड़ी होती जा रही है, हो हैं पंडित जी बहुत समझदार लग रहे हैं, कहने पंडित जी कछु नहीं, अब जो कछु होगा सो होगा, हमें आपसे जो है अब अज्ञानी जीव हैं हम, हमें कुछ थोड़ी बातें ज्ञान की आपसे सीखने दी। कौनू अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे आदमी से जावर पूछ लो कि हम अज्ञानी हैं और आपको थोड़ी बातें आप समझा दो, सब ठंडा हो जाता मामला, बताओ बैठ जाओ तुरंत ही होता ही। तो बैठ गया पंडित जी, हाँ बताओ तुम बैठो, अज्ञानी तो हो ही तुम, अब बैठ गया बताने। तो कहने लगा पूछो, क्या पूछना तुम्हें? कहने लगा जाए पूछने थी कि आयु का बंध कैसा होता है। कहने लगा कैसा होता है? इसमें सात कर्मों का तो 24 घंटे होता रहता, आयु का 8 अपकर्ष काल में होता है। कहने बताओ आप, हमें समझ में नहीं है कैसे होता। बता दिया उनने कि जब पूरी आयु जितनी अपन ने बांध ली है वर्तमान की, उसमें से 2/3 निकल जावे तो पहला मौका आता है, और मध्यम परिणाम हुए अत्लेशा के तो आयु बनती है, अगर उसमें भी नेबंध है तो जितनी और बची वो में से 2/3 निकल जावे, फिर एक दूसरा काल आता है फिर आयु बनती है, ऐसे 8 बार मौके आते हैं, और अगर आयु ने बने बंधे तो मरण के जो है एक आवली पहले जो है आयु का बंध हो जाएगा, एक आवली एक समय पहले। सब समझ में आ गई। कहले तुमने जी पूछा क्यों भैया? पंडित जी ने पूछ लिया वर्णी जी से कि तुम और कुछ समझते हो जी, तो तुमने पूछ ली? कहले कछु नहीं, हम तो जाए सोच रहे थे कि अगर आप जब हमें डांट रहे थे जब आयु बंद है तो आपको कहां की बंद है आयु, आप सब जानते हो बहुत ज्ञान है आपको कि आयु ऐसे ऐसे बंधती है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जिस समय हम कषाय कर रहे हैं उस समय अगर आयु बंधेगी तो हम कहां जाएंगे, तो इस ज्ञान का क्या मतलब है? इतना ज्ञान आप दूसरे को बताने के लिए रखे हो और इतनी कषाय कर रहे हो, इससे क्या आपके मन? कषाय की मंदता में ही ज्ञान शोभा पाता है भैया, जिसके कषाय की मंदता है उसी के क्षयोपशम होएगा, और जिसके क्षयोपशम हुआ है ज्ञान का, जिसको दो बातें धर्म की आती हैं उसकी कषाय मंद हुए बिना नहीं रहेगी। चरणानुयोग यही बात सिखाता है, और चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हुए लिखा है उसमें कि चरणानुयोग का प्रयोजन है कि बाह्य क्रिया के अनुसार ही परिणाम होते हैं। कहते कि मंद कषाय होए, बाह्य क्रिया के अनुसार परिणाम भी मंद कषाय होवे, बहुरी कोई के न होए तो मति होए, पर श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रिया का उपदेश देते हैं कि भैया भाई में मंद कषाय रखो, अब भीतर तुम्हारे जो होवे सो होवे, होंगे परिणाम उससे निर्मल। पर आज हम सोचते हैं कि बाह्य क्रिया से भी क्या होने वाला है। नहीं भैया, सम्यक दर्शन के बिना भी, इसमें लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब कि सम्यक दर्शन के बिना भी कोई व्यक्ति अगर बाह्य शुभ क्रिया करेगा तो कम से कम दुर्गति से तो बच जाएगा, अच्छी गति मिलेगी तो धर्म का संयोग मिलेगा और सम्यक दर्शन की पात्रता मिलेगी, इतना तो हो ही जाएगा बाह्य क्रिया से। सब यार से तो अच्छो है क्या तपन? जो हम पाप कर रहे थे उससे तो अच्छी है ये बाह्य क्रिया, भले ही हमारे पास भीतर क्या पता। और कौन सा सम्यक दर्शन लगाना? तो कहते हैं आप सम्यक तो सहते हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म विषय प्रधान हुए ताखों व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणों में अधिक मान करके उसकी आदर सत्कार करना। आप भले ही सम्यक दृष्टि चाहे, एक सम्यक दृष्टि है सौधर्म स्वर्ग का इंद्र और बालक भगवान को अभिषेक करवाते समय तांडव नृत्य कर रहा है, 1008 आंखें बना रहा है, अबे बालक भगवान भीतर आ गई है का? रागी है घर में बैठी अभी, भी हमारे से गुणों में अधिक हैं, ऐसा व्यवहार क्रिया में भी अगर कोई हमसे गुणों में अधिक होवे तो उसकी हम प्रशंसा करें, उसके आचरण से हम अपने आचरण को पवित्र करें, ये हमारा ज्ञान सही ज्ञान कहलाएगा। और ये ज्ञान तो अहंकार से युक्त है कि दूसरे को हम कछु ने समझें और अपने ही को सब कछु समझते रहें, तो ऐसा ज्ञान तो भैया जिस चाहे को हो जाता, उस ज्ञान की यहाँ चर्चा नहीं है। ज्ञान तो सच्चा वो है जो आचरण के साथ होवे और दूसरे धर्मात्मा पुरुष के लिए जो आदर दे सके। आज जो है आचरण की मैंने क्यों नहीं व्यक्ति आचरणवान होता, क्योंकि आचरण का उसके लिए जो सुख मिलना चाहिए था बाहर से भी वो भी नहीं मिलता। अगर कोई घर में बच्चे जो है एक आध उपास कर ले में और संजाखो उनको बड़ो व्यक्ति भी हो गए और उपास कर ले और संजाखो उसको थोड़ी बहुत आकुलता हो जावे, तो कहने वाला ये नहीं कहेगा कि चलो कोई बात नहीं शांति रखो काय करत हो, कई कौन ने हती और करो होत नहीं है तो करत काय। जी कहने वाले 50 लोग मिलेंगे मगर जी संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा कि देखो सुबह से संध्या तक हो गया तुमने इतनी शांति रखी, अब और थोड़ी शांति रखो, धर्म ध्यान में मन लगाओ, देखो रात तो कट जाएगी सुबह से फिर तुम जीत गए, तुमने अपना व्रत नियम संयम अच्छे से कर लिया। व्रत नियम संयम में बढ़ावा देने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, उसको प्रमोट करने वाला तो नहीं मिलेगा, उसको गिराने वाला मिलेगा। ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान तो वही है जो दूसरे के आचरण को पवित्र करे और निरंतर अपने उस ज्ञान के माध्यम से अपना भी आचरण पवित्र करता चला जाए, ऐसे ही ज्ञान की यहाँ चर्चा है। करणानि योग हमारे परिणामों को बताता है कि जिन परिणामों से हमारा बुरा होता है उन परिणामों को छोड़ो, जिन परिणामों में हमारे जीवन में वृद्धि होती है, हमारा जीवन पवित्र होता है, वे परिणाम अपने बनाओ। और कहते एक जगह लिखा है उसमें कि तत्वज्ञानी होए और फिर करणानि योग का अभ्यास करे तो क्या कहते, कहते तत्वज्ञान निर्मल होए। सामान्य व्यक्ति करे सो करे ठीक है, लेकिन कहते तत्वज्ञानी भया फिर इसते अभ्यास ते तत्वज्ञान निर्मल हुए। जैसे कोई जानता था कि ये रत्न है, उस रत्न का विशेष वर्णन जानने से निर्मल रत्न का पारखी होए, ऐसे ही जो व्यक्ति पहले जानता था कि आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, मेरी आत्मा अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा जानता था, वो करणानि योग के माध्यम से अगर उसने अभ्यास किया तो उसके इस परिणामों में निर्मलता आएगी, उसका तत्व ज्ञान निर्मल होगा। ये करणानि योग के पढ़ने से लाभ होने वाला है, चाहे कोई मिथ्या दृष्टि पढ़े और चाहे सम्यक दृष्टि पढ़े। ये बात जुदी है कि भैया जो सम्यक दर्शन ने होवे और बहुत सारा ज्ञान होवे, उसकी तो अपन पहले चर्चा कर चुके कि श्रद्धा है ही नहीं है और ज्ञान प्राप्त कर रहे तो वो ज्ञान भी बेकार है, उससे भी अपना कोई लाभ नहीं होने वाला। पर दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, श्रद्धा भी और आचरण भी और हमारा ज्ञान, तभी वो समीचीन ज्ञान माना जाएगा। ये अपन ने कल पढ़ा था, आज अपन चरणानि योग के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा है चरणानि योग, उसके माध्यम से हमें धर्म ध्यान हो सकता कि नहीं हो सकता। प्रथमानि योग के माध्यम से भी धर्म में रुचि होती है, करणानि योग के माध्यम से भी धर्म में रुचि होती, जी अपन ने सीख लिया। अब कहते चरणानि योग के माध्यम से भी हमारी धर्म में रुचि कराने के लिए चरणानि योग लिखा है, चौथे नंबर का है ये दूसरे अध्याय। गृह मेथ्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानं विजानाति भाव श्रुत रूप। जो सम्यक् ज्ञान है वो उसमें चरणानि योग किसे जानना, सब भाव श्रुत रूप ही सम्यक् ज्ञान है। ये भाव श्रुत के मायने समझते आप, ये तो कहलाएगा जो लिखा हुआ वो द्रव श्रुत है, इसके माध्यम से जो हम अपने आत्मा की तरफ रुचि लगाते हैं सो ही भाव श्रुत है। जब अपने जीवन में अनुभव में उसको लाना शुरू कर देते तो वही ज्ञान हमारे लिए भावश्रुत रूप हो जाता, और जो हमारे माथे में रखा रह जाता है अकेला टेप रिकॉर्ड की तरह तो वो सब द्रव श्रुत की तरह है। किताब में रखो हो सपने ते रख लो तो भी उससे कोई, जब वो अपने जीवन में उतर जावे तब वो भावश्रुत बनता है। हृदयंगम होना चाहिए, सिरंगम तो हो जाता, हृदयंगम होना बहुत आसान नहीं है। जिसके हृदय में उतर जावे उसका आचरण तो बदल ही जाएगा, हमने आपसे एक उदाहरण दिया था ना कि जब तक उसको मालूम नहीं था, वो लड़का छोटा सा था, गधे को ले जाता था अपने धोबी का लड़का था, और उसको एक कांच का टुकड़ा मिला, जब तक उसको मालूम नहीं था सो उसको फेंकता था और खेलता था उसके साथ, और जब एक जौहरी निकला उसने कहा कि जिससे तुम खेल रहे वो हीरा है और बहुत कीमती है, फिर देखो उसका व्यवहार कैसा, अब वो मुट्ठी में दबाएं और पॉकेट में हाथ डाले, अब फेंके अगर तो देखें, अब खेले उसे, कहते अब नहीं खेल सका, अब तो मालूम पड़ गया। तो जैसे ही हमें अगर भावश्रुत हो जावे, ऐसा ज्ञान हो जावे, तो आचरण बदले बिना रहता नहीं, और आचरण न बदले, बाही क्रिया न बदले, इसका मतलब है कि भीतर अबे अंधेरा है, अबे रोशनी भाई नहीं, भीतर कोई के कमरा में रोशनी होवे तो सांसर में से बाहर दिखा जात, भले ही दरवाजो बंद हुए, कहूं न कहूं से कौन झिरी में से दिखाई दे, अगर भीतर रोशनी हुई है तो किसी न किसी बाह्य क्रिया में वो रोशनी दिखाई पड़ेगी, वो ज्ञान दिखाई पड़ेगा कि व्यक्ति जो है समझदार है, व्यक्ति जानता है कि किसमें हित है किसमें अहित है, हुए बिना नहीं रहेगा, बाह्य क्रिया में आए बिना नहीं रहेगा, उसी को कहते भावश्रुत। ऐसा भावश्रुत कैसा है, कहते गृहस्थ और मुनियों के चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा में जो कारणभूत चरणानि योग शास्त्र है वो उसको जानता है। सम्यक ज्ञान चरणानि योग रूप है तो कैसा है, कहते जिसमें गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की कैसे उत्पत्ति होती, उनकी वृद्धि कैसे होती और उनकी रक्षा का क्या उपाय है, अपन इसमें सब आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमारे गृहस्थ का कौन सा चारित्र है, साधु का कौन सा चारित्र है, उसमें कैसे वृद्धि करना, पहले अणुव्रत ले लो, फिर उनकी वृद्धि के लिए गुणव्रत भी ले लो, फिर उनकी रक्षा के लिए बाड़ी लगाओ, तो शील व्रत ले लो, शिक्षा व्रत ले लो, ये सब काहे के लिए हैं, कहते उत्पत्ति, उत्पत्ति के साथ वृद्धि, जैसे अपन वृक्ष लगाते हैं तो वृद्धि की कैसे, वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगी, भैया बीज बो, पानी डालो, खाद लगाओ, उसमें इतनी बातें करो, जब ऊंगने लगे तब कोई खाना जाए उसको, उसकी वृद्धि का उपाय करो और उसके चारों तरफ उसकी रक्षा का उपाय करो, जब बड़ा होएगा वो। इसी तरह से आचरण के बारे में सब बातें लिखी आचारांग सूत्र में, जो पहला अंग है वो आचारांग ही है, 11 अंग 12 अंगों में से उसमें सबसे पहले ये लिखा कि गृहस्थ के चारित्र की कैसे उत्पत्ति होगी, उसकी वृद्धि कैसे होगी और उसकी रक्षा क्यों कैसे होगी, ये सब चरणानि योग में लिखा हुआ है। चरणानि योग के अनुसार ही सम्यक दर्शन की प्रक्रिया लगाना, जब हमें चारित्र लेना हो तो चारित्र लेते समय कहते हैं कि चरणानियोग की अपेक्षा जो सम्यक दर्शन है उसी को देखना, करणानियोग वाले सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करना कि जब हमें कर्मों का क्षयोपशम और क्षयोपशम हो जाएगा, जब ये नक्की हो जाएगा, अब नक्की कैसे, कुकर है नक्की, कुहे बहुशुद्धवान यावधि ज्ञानी मन पर यानी केवल ज्ञानी तो कोई है नहीं, कौन करेगा, तो लिखते हैं कि कौन द्रवलिंगी है कौन भावलिंगी है हम नहीं कह सकते, हम तो बाह्य वेश देख करके, आठवां अध्याय पढ़ो कभी, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी कल ही उठा करके देख रहा था फिर से कि मैं भूल तो नहीं गया, ठीक लिखा उसमें, यही लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, दातार क्या समझे कि मुनि महाराज घर में आए हैं और अंतर मुहूर्त पहले उनका सातवां गुण स्थान था और नीचे गिर गए पहले गुण स्थान में, अभी अंजलि ज्यों की त्यों है, अब देव अब बंद करो, कहे हो गया मिथ्या दृष्टि, अब क्या करोगे आप, आपके पास थर्मामीटर है क्या, लगा के देखोगे उसमें कि जी आ गया नहीं है, कहते इसलिए जी मत हिसाब लगाना, चरणानि योग की पद्धति से ही विचार करना, कहते कि चरणानि योग की पद्धति कैसी है, उसमें तो बाह्य तपस्या की ही प्रधानता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो गई इतने ही सम्यक दर्शन चरणानि योग का पर्याप्त है, इसके अलावा जो कर्मों का क्षयोपशम और क्षयोपशम है वो करणानि योग की पद्धति, इसमें मत लगाना, सब एक दूसरे में गड्ढमड्ढ नहीं करना, उस समय द्रव्यानि योग का भी सम्यक दर्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इनको आपापर का वेद विज्ञान है कि नहीं है, अब आपापर का वेद विज्ञान को उसी समय गायब हो जाए और जिस समय की भोजन कर रहे हैं उस समय तो क्या कर देंगे आप, कैसे पता करेंगे कि आपापर का वेद विज्ञान भीतर में है कि नहीं, आत्मानुभूति हो रही है कि नहीं हो रही, कहते ये तो जो आत्मा है उसके आश्रित है, हमारे आश्रित तो बाहर का आचरण, चरणानि योग तो बाह्य आचरण को ही बताता है, उस बाह्य आचरण में देख लेना कि गृहस्थ का क्या आचरण होना चाहिए, एक साधु का क्या आचरण होता है बाह्य में, वो अगर दिखाई पड़ता है तो पर्याप्त है, उसके अनुसार ही अपना चरणानुयोग का व्यवहार आदान प्रदान, नहीं तो मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाए। अगर हम बाह्य आचरण को ही निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे तो मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा। एक धर्मसागर जी महाराज बहुत सरल थे, सीधे सच्चे थे, ज्यादा दांव पेच में नहीं पढ़ते थे, वैसे तो साधु दांव पेच में नहीं पढ़ता, पर श्रावक की सोबत में आकर के थोड़ा जो है सीख जाता है, हम तो देखते रहते हैं, सीखना पड़ता नहीं तो उनके बीच में रहना है, जंगल में रहते होते तो इस सब प्रपंच की आवश्यकता नहीं थी, चार जनों के बीच में रहो तो बड़े व्यवहारिक बन के रहना पड़ता, सबको साधे रहो। अब भाई देखो बहुत मुश्किल होता है, हमारे मन में क्या आचरण में क्या योग्य है क्या अयोग्य है इसका विचार तो स्वयं करता है, लेकिन बाह्य में भी जो है व्यवहारिकता बहुत आवश्यकता होती। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि भैया निश्चय बहुत सरल है, व्यवहार सबसे कठिन है। निश्चय में तो हाथ पे हाथ धरें अपने और आत्मा में लीन रहो, किसी से कोई लेना देना नहीं, और जरा बाहर आए तो फिर व्यवहार में तो राग द्वेष के सिवाय और कुछ नहीं होता। धर्मसागर जी महाराज बहुत सरल थे, उनके पास जाकर किसी ने शिकायत की कि फलाने फलाने महाराज ऐसो करत, उन्होंने सब सुन ली, फिर बाद में धीरे से बोले, कहने लगे काय दो बार तो नहीं खा रहे? अरे नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप, एक ही कई बार खाते हैं। वे घबरा गए एकदम के, कैसी पूछ रहे, दो बार तो नहीं? कहने नहीं, ये कई बार खाते। वो कहने लगे काय देखो तो तुमने अच्छे से, कहने हम तो सब और तो सब हमने अच्छो देखो, कहने कपड़ा तो नहीं पहरे थे? कहले हाँ कपड़ा पड़ा कहा पहने, भी तो बिल्कुल जैसी दिगंबर मुद्रा है वैसी है। कहला उठो तो फिर जाओ, सब ठीक है, तुम आओ इतने ही देखो को काम है और ने देखो तो बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे, तुम इतने ही देखो, तुम जिन मुद्रा देखो कि ये जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा का अभिनय नहीं होना चाहिए, इसमें तो लिखा हुआ है कि आज अगर वर्तमान में ये जिन लिंग धारण किए हुए कोई है और अगर उसके आचरण में आपकी आपकी दृष्टि में ठीक नहीं बैठता है तब उसमें पूर्वाचारियों की स्थापना करके उनकी विनय करना चाहिए। ये लिखते टोडरमल जी कि अगर बाह्य में आपको जिन मुद्रा दिख रही, क्योंकि जिन मुद्रा की अभिनयनी, इसी मुद्रा के द्वारा जो है, शांति सागर जी महाराज के साथ भी यही हुआ था, जब वीर सागर जी पाए सागर जी महाराज ग्रस्त अवस्था में आए थे उनके पास और उनसे कहा था, बहुत सारी चर्चा करी थी, कहने इससे क्या होना, अकेले नग्न होने से कोई थोड़ी मोक्ष होता है, और आधा घंटे तक बहुत करते रहे चर्चा, शांति सागर जी चुप बैठे रहे। बाद में कहने भैया जी बताओ, हमने आम की गुठली बोई, कौन सा पेड़ लग है? कहले आम को लग। अब आम के पेड़ में जब तक फल नहीं लगे तब तक उसको आम का पेड़ कहोगे कि नहीं कहोगे? कहले क्यों नहीं कहेंगे? कहले बस अब इसमें जब मोक्ष का फल लगेगा तब लगेगा, पर लगेगा इसी में, इसलिए हमने इसको अंगीकार किया, जब लगने हो उसे लगे, पर जब जब भी होगा इसमें नहीं होने वाला कि आप पूरे उसमें लिपटे हुए हो और अब आप कपड़े से आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हो तो शरीर से का छोड़ो, फिर द्रव कर्म और भाव कर्म से का मुक्त हुई हो, अब नो कर्म से मुक्ति नहीं हो पा रही आप, और नो कर्म ये सब चीजों से मुक्ति नहीं हो पाती। कहते इसलिए चरणानुयोग की पद्धति के अनुसार ही वही आचरण होगा और उसमें ज्यादा मीन मेस करने से, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जैसा स्वीकार कर लो, मैं ये भी कह रहा हूं साथ में परीक्षा भी करनी चाहिए, पर कई बार ऐसा होता कि ज्यादा परीक्षा करने से हम सही चीज से भी चूक जाते हैं, ज्यादा एनालाइज करने से भी कई बार हम चूक जाते हैं। हम आपसे बार बार ये चीज कहते कि करो, लेकिन जितनी आवश्यक है, और उसके बाद सैनिक तो तीन मुनि महाराज बैठे थे और उसमें से जानते थे कि दो की चरिया ठीक नहीं है, तब भी तीनों के साथ बैठे थे, सो तीनों को नमस्तु कर लिया था, सम्यक दर्शन था, छायक सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी, उस समय की चर्चा है। क्यों? क्योंकि मुझे तो दिगंबर मुद्रा जो दिखाई पड़ रही उसको रिस्पेक्ट देना है, इनके भीतर के परिणाम जे जाने, अपन को क्या करना, ऐसा चरणानुयोग है। इस चरणानुयोग के पढ़ लेने से जो है हमारे मन में निर्मलता आती। और एक बात और कि चरणानुयोग अगर कोई अभ्यास करे और तत्व ज्ञानी पहले से हैं, जो सम्यक दृष्टि है वो भी अगर चरणानि योग का पड़ता है तो उसमें कहते कि उसको चरणानि योग की पद्धति में क्या भासता है कि देखो वीत राखता तो यही है। चारित्र किसका नाम मालूम? जितनी जितनी कषाय कम हुए उतना उतना चारित्र, जितना जितना राग कम होवे उतना उतना चारित्र है। तो उसको दिखाई पड़ता है जो सम्यक दृष्टि भी है, तत्व का अभ्यासी है, वो देखता है बाह्य क्रियाएं। चरणानियोग ग्रंथ पढ़ता है तो चरणानियोग पढ़ करके उसके मन में क्या आता है कि धर्म तो वीतरागता में ही है, ये जितनी राग द्वेष की कषायों की हानि कर रहे हैं उतना ही वीतरागता इनके भीतर आती चली जा रही। अपन तो आज के समय में अगर चरणानियोग के ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रावक का पढ़ते हैं तो अपने लिए नहीं पढ़ते, जा देख भी पढ़ते हैं कि वे दो प्रतिमा लाए हैं सुबह कैसी पालन कर रहे हैं, पढ़ के देख लो, या के मूलाचार पढ़ रहे। मूलाचार इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम मुनि बनेंगे तो कैसा आचरण करेंगे, यहां जो बने हैं वे कैसो करत हैं, इसके लिए पढ़ रहे। तो कहते जी आप ज्ञान जो अर्जित कर रहे हो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो कि पर की चीचालेदारी करने के लिए कर रहे हो, कैसा आप किसके लिए कर रहे हो, ऐसा विचार करके ही ये अनियोग पढ़ना। इन अनियोग को पढ़ने की जो विधान है, जो प्रक्रिया है, बहुत अच्छी दी आठवें अध्याय में, कभी उसको भी खोल के मैं तो यहां डिटेल में और क्या बताऊंगा आपसे, लिखा हुआ है। उसके अनुसार पढ़ो अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, चाहे प्रथमानियोग पढ़ो, चाहे घृणानियोग पढ़ो, चाहे चरणानियोग पढ़ो, चाहे द्रव्यानियोग पढ़ो, जौन अनियोग भी पढ़ो, उससे अपने परिणामों की निर्मलता होवे ये हमें देखते रहना है, दूसरे का हिसाब नहीं बनाना है। वी आर नॉट जज, हम यहां पर निर्णायक बनकर के पैदा नहीं हुए हैं दूसरे के जीवन के, हम तो अपने जीवन का हिसाब किताब ठीक करने के लिए यहां उत्पन्न हुए हैं, और हमें इस ज्ञान का लाभ लेना चाहिए कि जिससे हमारे परिणाम संभलें। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्या सागर।
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञनग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा जग दर्शन करने वाला शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ, त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे काहू